सो क्वेश्चन है कि क्या मुस्लिम धर्म में मुक्ति का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो अगर कुरान शरीफ का अध्ययन किया जाए और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि आत्मा है, उसी तरह मुस्लिम धर्म में उसको रूह कहा जाता है। हाँ, और जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि रूह आत्मा जो है दो तरह की है, बद्ध जीव और मुक्त जीव आत्मा। उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट, ये धारणा मुस्लिम धर्म में भी है। और वहाँ पर जो मुक्त आत्मा है उसको बोलते हैं रूह मुजर्रद, और जो बद्ध आत्मा है उसको बोलते हैं रूह तरकीबी। हाँ, तो मुस्लिम धर्म में भी ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जो तरकीबी रूह है, मतलब जो बद्ध जीवात्मा है, वो जिस्म में बद्ध होती है, और जो जिस्म है वो काल और जो प्लेस है, टाइम एंड स्पेस, उसके उससे बद्ध है। लेकिन जो रूह मुजर्रद है वह काल और जो स्थान है उससे बद्ध नहीं है। हाँ, तो क्या जैसे सनातन धर्म में वैकुंठ की बात करते हैं, तो क्या मुस्लिम धर्म में वैकुंठ का कॉन्सेप्ट है? तो मुस्लिम धर्म में भी वैकुंठ का कॉन्सेप्ट है, और उसको आलम अल मशाल के नाम से पुकारा जाता है। और वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? वहाँ पर खुदा से इश्क जो है वो विकसित करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। हाँ, और जब ये कहा जाता है कि जो खुदा है वो खुदा क्या कोई फॉर्म, कुछ आकार है या नहीं है, तो खुदा का ये कहा जाता है कि खुदा का जो फॉर्म है वो जिस्मानी नहीं है। हाँ, लेकिन जिस्मानी नहीं है करके ये आमतौर पर समझा जाता है कि जिस्मानी नहीं है मतलब खुदा का आकार नहीं है। ऐसे तो सनातन धर्म में भी जब कहा जाता है कि भगवान का कुछ आकार नहीं है, भगवान का भौतिक स्वरूप नहीं है, तो लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह से हमारे हाथ पैर मुंह नाक इत्यादि है, ऐसे भगवान का हाथ पैर मुंह इत्यादि नहीं है। लेकिन अगर हम भक्ति ग्रंथ की दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ ये बताया जाता है कि भगवान का कुछ भौतिक स्वरूप नहीं है, मतलब भगवान का स्वरूप है लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप है। हाँ, इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी ये मुस्लिम धर्म में जब बोलते हैं कि भगवान का कोई जिस्मानी आकार नहीं है, कुछ भौतिक रूप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि भगवान का, खुदा का आकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि खुदा का एक शुद्ध स्वरूप है जिसे मुजर्रदी कहा जाता है। हाँ, मुजर्रदी कहा जाता है। और पैगंबर साहब जो प्रॉफिट हैं, उन्होंने खुदा के जो जो दिव्य स्वरूप है, हाँ, अपने जितने उनकी एलिजिबिलिटी थी, जितनी योग्यता के अनुसार, खुदा की इच्छा के अनुसार उनको दर्शन हुए, और ये भी स्वीकार किया जाता है कि मुक्त स्थिति में भी जो है भगवान के जो खुदा का जो घर है, हाँ, जिसको बहिष्ठ बहिष्ठ भी कहा जाता है, वहाँ पर खुदा की सेवा की जाती है, जिसको इबादत कहते हैं। हाँ, सो इसका मतलब है कि मुक्ति के बाद भी, मतलब एक बार आप इस जिस्मानी धारणा से, कॉन्सेप्ट से बाहर निकल गए, तब भी जो रूह है वो, तब भी बंदा एक, उसका अस्तित्व रहेगा और वो अल मिशाल, हाँ, या बहिष्ट में जो भगवान का घर है, जिसको हम वैकुंठा एक बार समझ सकते हैं, वहाँ पर वो खुदा की जो दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप है, वहाँ पर उनकी इबादत अर्थात उनकी सेवा करेगा। सो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताई गई हैं। हाँ, सो इसका ज़्यादा डिटेल में अगर हमें बात करनी है तो हमें भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, जहाँ पर कि भगवान के दिव्य स्वरूप, हाँ, जहाँ पर भगवान के वैकुंठ धाम, जहाँ पर वैकुंठ धाम में भगवान के परिकरों की, भगवान के सेवकों की मुक्त जीवात्माओं के बारे में वर्णन बहुत ही विस्तार से दिया गया है। हाँ, सो ऐसा नहीं है कि जो कुरान शरीफ या सूफी जो साहित्य है उसके अंदर बिल्कुल ऑपोजिट टीचिंग्स हैं सनातन धर्म के, ऐसा नहीं है। उसको भक्ति की दृष्टि से देखने पर हमें, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जो मुक्ति के बाद का जो जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया गया, जबकि जो भगवद गीता इत्यादि ग्रंथ है उसमें बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस हैं। हाँ, बहुत ही विस्तार से बताया गया, तो अगर हम उनको पढ़ेंगे, अगर हमारी जिज्ञासा होगी, अगर हमारी रुचि होगी, तो हम जान सकते हैं कि भगवान के धाम में, खुदा की बहिष्ठ में कैसे उनकी सेवा की जा सकती है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। हरे कृष्णा।